हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इस शब्दों को सुनकर अनामिका का सिर भी चकरा गया। वो समझ गई कि झलक के लिए अब सबसे बड़ी सुरक्षा और प्यार यही आदमी दे सकता है, जो असल में उसका भी पिता है। फिलहाल अनामिका को अपने पिता को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खो चुकी हो, क्योंकि जिस मकसद के तहत वो इस शहर में आई थी वो मकसद आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था। अपने पिताजी को ढूंढने के लिए वो यहां आई थी और जिनके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, और उसी का पिता उसी के सामने खड़ा होकर किसी और का पिता बना हुआ था। ये बात सुनकर तो अनामिका को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सिर पर बड़ा सा बम फोड़ दिया हो। ऐसा नहीं था कि उसे झलक से हमदर्दी नहीं थी, वो झलक से काफी गहरा लगाव कर चुकी थी, उसे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन अपने पिता के मुंह से झलक को बेटी सुनकर उसे बेहद अजीब सा लग रहा था। फिलहाल अब उसके दादा श्री दिग्विजय जी आगे आए और जल्दी से अपने बेटे को गले से लगाकर रो पड़े थे। फिर उन्होंने अनामिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, हमें तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें हमारा बेटा इस तरह मिलेगा। हमने तुम्हें कितना रोका, तुम्हें वापस ले जाने तक की कोशिश की। हमें लगा था कि शायद हम तुम्हें भी खो देंगे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता को ढूंढ निकाला। मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस बूढ़े की आंखों को एक बार फिर से रोशनी दे दी। हमें तो लगा था कि अब हमारी जान चली जाएगी और शायद हम अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तूने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। ये कहते कहते लगभग दिग्विजय सिंह मल्होत्रा रोने लगे थे। तभी अनामिका ने आगे बढ़कर अपनी दादाजी को गले से लगा लिया। वहीं आरव अब बेख्याली में कभी अनामिका को देख रहा था तो कभी अपनी गोद में बेहोश पड़ी झलक को। ठीक उसी वक्त कुछ पुलिसकर्मी वहां आकर खड़े हो गए थे और अब आरव को घूर कर देखने लगे थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से कमरा छोड़कर यहां आने की? चलो अभी इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने ये बात कही, अनामिका और दिग्विजय जी दोनों के तन बदन में आग लग गई थी। वहीं दिग्विजय सिंह जी गुस्से में भरे हुए आगे आए और गरजते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से हमारे बेटे से बात करने की? जानते भी हो किसके सामने खड़े हो? तभी एक पुलिसकर्मी उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, देखिए, आप चाहे कहीं के MLA हो, MP हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ऑर्डर मिले हैं और हम सिर्फ इसे अपने साथ लेकर जाएंगे, आप बीच में नहीं रोक सकते। ये सुनकर दिग्विजय सिंह जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने खींचकर एक जोरदार तमाचा उस पुलिसकर्मी के मुंह पर दे मारा। फिर खड़े खड़े उन्होंने अनामिका को इशारा किया। देर न करते हुए अनामिका ने किसी को कॉल किया और देखते ही देखते दोनों पुलिसकर्मियों के फोन बजने लगे, और जैसे ही उन्होंने अपने अपने फोन सुने अचानक उनके चेहरों से पसीना छूटने लगा। दोनों जल्दी से दिग्विजय सिंह जी के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे, फिर वहां से तुरंत चले गए। तब दिग्विजय जी ने अनामिका को आंखों ही आंखों में बता दिया था कि उसे आगे क्या करना है। देर न करते हुए अनामिका ने झलक को साथ लिया उसे आराम से, और अपने दादाजी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ने के बाद उसने सीधा एक कॉल किया और उसने मिस्टर आरव मल्होत्रा के खिलाफ जितने भी चार्ज थे वे सारे खत्म करवा दिए। इतना ही नहीं, उसने इस बात का नाम निशान तक मिटवा दिया गया कि कभी कोई आरव मल्होत्रा नाम का कैदी जेल में मौजूद भी था। जल्दी ही अनामिका के कॉल करते ही प्राइवेट जेट वहां पहुंच गया। इस वक्त कोई किसी से कोई खास बात नहीं कर रहा था। फिलहाल वे लोग सबसे पहले इस शहर से निकलकर बाहर जाना चाहते थे। वैसे भी अनामिका जानती थी कि झलक की जिंदगी में इस शहर में अब कुछ भी नहीं बचा है। अब वक्त आ चुका था झलक को अपने साथ लेकर जाने का। झलक उसके पिता की बेटी है या नहीं, इस फैसले पर वो बाद में भी बात कर सकती थी। देर न करते हुए वे लोग प्राइवेट जेट से सीधे अपने होम टाउन यानी बेंगलुरु शहर पहुंच चुके थे। एक बड़ा ही खूबसूरत सफेद संगमरमर से बना हुआ बंगला एक अलग ही जगह पर स्थित था। उसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। सभी लोग अंदर थे और दिग्विजय जी बड़े ही भावुक अंदाज में अपने बेटे को देख रहे थे। उनका बेटा लगातार कभी झलक को देख रहा था तो कभी अनामिका को। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसे उसकी बेटी झलक के साथ साथ अनामिका भी मिल जाएगी। फिलहाल सभी के मन में ना जाने कितने ही सवाल थे और हर कोई उनके जवाब भी चाहता था। देर न करते हुए वे लोग अब सीधे अपने अपने घर पर पहुंच चुके थे। प्राइवेट जेट उनके गार्डन में लैंड करते ही अनामिका के इशारे पर कुछ लोगों को बुलाया गया, जिन्होंने झलक को सीधे स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर कमरे में ले गए। वहां पहले से ही एक छोटा सा अस्पताल बना हुआ था जहां झलक की देखरेख शुरू कर दी गई थी। इस वक्त आरव बाहर खड़ा हुआ था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। वहीं अनामिका गहरी नजरों से बार बार आरव को देख रही थी। तभी दिग्विजय जी आगे आए और अनामिका के सिर पर हाथ रखकर बोले, शांत हो जा बेकी, शांत हो जाओ। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे मन में कितने ही सवाल हैं जो तुम्हें पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम्हें खुद को शांत रखना होगा। अनामिका ने अपने दादाजी की ओर देखकर कहा, दादा मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ, क्या यही वो इंसान है जिन्होंने नैना ओबेरॉय के साथ। अनामिका इतना ही कह पाई थी कि अब आरव लाल आंखों से उसे देखने लगा। एक पल को उसकी लाल आंखें देखकर अनामिका पूरी तरह से घबरा गई। तभी दिग्विजय जी तुरंत आरव को देखकर बोले, बेटा अनामिका के मन में जो सवाल हैं वही हमारे मन में भी हैं, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। भले ही तुम हमें कितने ही सालों बाद मिले हो, लेकिन हम आज भी वही हैं जो कल थे। अपने पिता की बात सुनकर आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसने अपनी पूरी कहानी अपनी बेटी और अपने पिता को बता दी। अब जैसे जैसे अनामिका वो सारी बातें सुन रही थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। तभी वो झुककर आगे बढ़ी और तुरंत अपने पिता को गले से लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। दिग्विजय जी की भी आंखें भर आई थी, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब बाप बेटी का ऐसा मिलन हो रहा था। काफी देर तक रोने के बाद दिग्विजय सिंह जी दोनों को शांत कराने लगे और बोले, बेटा तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन झलक का क्या? हमने उस बच्ची को टीवी पर देखा था, किस तरह उसे बदनाम किया जा रहा था, किस तरीके से उसके साथ बदतमीजी हो रही थी।
दिग्विजय जी की बात सुनते ही अनामिका की आंखों के सामने एक बार फिर सिद्धार्थ खुराना का झलक के मुंह पर डिवोर्स पेपर के साथ करोड़ों का चेक फेंकना, रणविजय की बातें, दादी की खोखली इज्जत की दलीलें और साथ ही आर्यन का दोगलापन, ये सब कुछ घूमने लगा। अनामिका ने अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोली, आप जानते हैं दादा, हमारी जिंदगी में इतने बड़े दुख कभी थे ही नहीं, लेकिन झलक उसकी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। वो पूरी तरह से दुखों से घिरी हुई है। इनफैक्ट वो इतनी ज्यादा टूट चुकी है कि हम आपको क्या बताएं। हमने झलक जैसी बिंदास लड़की अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं थी। अब आप जानते हैं, जिस वक्त आपने मुझे उस शहर से वापस लाने के लिए अपने आदमी भेजे थे और मुझे वो लोग पानी के जहाज से वापस यहाँ ला रहे थे, उसी वक्त झलक ने अनजान होते हुए भी मेरी मदद की थी। उसी पल वो मेरे दिल में बस गई थी। उसका एक अजीब सा आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचने लगा था, लेकिन मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि असल में वो मेरी बहन होगी। मेरा दिल उस वक्त अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था। मेरे सपने भी टूट से गए थे जब पता चला कि वो मेरी बहन है। और आज सब कुछ जानकर एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद अपने पिता को पाकर भी मैं उसे खो दूंगी, क्योंकि उसके पिता के सामने उसकी एक और बेटी खड़ी थी। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। वैशाली, अभी एक ही एपिसोड बना पाई हूँ, आप इससे काम चला लो आज। थैंक यू डियर गाइस फॉर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मी। नेक्स्ट 3 डेज आई विल ट्राई टू गिव मोर एपिसोड्स। थैंक यू डियर।